मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 15 जुलाई 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं शिप्रा वर्मा जो अम्बेडकर नगर से हैं, अजय प्रताप सिंह आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं और सचिन प्रभाकर अदगांवकर आप मुंबई से हैं। तो शिप्रा, अजय और सचिन, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं उदय पाल सिंह को जो सीधी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। इन्होंने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री 2016 एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो उदयपाल, इसके लिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भविष्य की बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी और बधाई भी। सच पूछे तो पहले के लिए बधाई और बाद के लिए शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को सामान्य तौर पर मुझे कुछ सूचनाएं आप लोगों को देनी होती हैं। पहली सूचना तो यही है फ्रेंड्स कि कल शनिवार और उसके नेक्स्ट डे संडे को डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आता है, तो डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आएगा। लेकिन शनिवार को यानी कि कल जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आप लोगों को पहले की तरह ही मिलती रहेंगी और बल्कि एडिशनल भी कुछ चीजें आपको सैटरडे को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें होते हैं कुरुक्षेत्र और योजना पत्रिका के एक एक आर्टिकल, जिसमें हिंदी के दो आर्टिकल और इंग्लिश के दो आर्टिकल, यानी कि योजना हिंदी और इंग्लिश के एक एक आर्टिकल और इसी तरीके से कुरुक्षेत्र के हिंदी और इंग्लिश के एक एक आर्टिकल, तो टोटल चार आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज जो आपको आर्टिकल दिए जाते हैं उन्हें आप बहुत सीरियसली लें, गंभीरता से लें। एग्जामिनेशन के लिहाज से जो मुझे इम्पॉर्टेंट मालूम पड़ते हैं वही आर्टिकल आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, जो वीकली क्वेश्चन होता है, वीकली क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जाता है और हमारे फर्स्ट टू फोर्थ बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो और कुछ आर्टिकल फॉर्म में रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो मित्रों, ये छोटी सी सूचना थी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर और हम लाइफ मैनेजमेंट में आज मैं फिर से चाह रहा हूं कि थोड़े से शेर व शायरी की भाषा में आप लोगों से बातें की जाए। दोस्तों, जो आर्ट लिटरेचर और कल्चर आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में है, मैंने देखा है कि उसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़े कॉमन नेचर के सवाल होते हैं। कॉमन नेचर कहने का मतलब है कि जो थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाले स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनके जवाब दे देगा। इसी संदर्भ में फ्रेंड्स, जब से हमारे यहां उर्दू शेर व शायरी का दौर चला, मध्यकालीन समय में, खासकर खुसरो इसके जन्मदाता माने जाते हैं जो 14th-15th सेंचुरी में हुए हैं, तो खुसरो के बाद से उर्दू भाषा ने और यहां तक कि खड़ी बोली ने भी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने कव्वाली को जन्म दिया, शेर व शायरी, पहेली, इस तरह की ढेर सारी चीजों की शुरुआत खुसरो ने की, अमीर खुसरो ने, जो बड़े ब्रिलियंट दिमाग के व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट, निजामुद्दीन चिश्ती के वो शिष्य थे। मतलब एक भारत के लिए गर्व की बात है कि खुसरो जैसा विद्वान व्यक्ति भारत में हुआ है और रहा है। तो दौर उस समय दोस्तों, जो शेर व शायरी का जो तौर तरीका था वो ज्यादातर रोमांटिक हुआ करता था। प्रेम, सौंदर्य, विरह, मिलन, इन सब की बातें ही शेर व शायरी में ज्यादा होती थी। और इसी के पैरेलल अगर आप हिंदी लिटरेचर को देखेंगे तो हिंदी लिटरेचर में एक पीरियड आता है जिसे हम कहते हैं रीतिकाल। उस रीतिकाल में भी बिल्कुल यही चीजें थी, प्रेम, विरह, सौंदर्य, इन्हीं सब की बातें होती थी। लेकिन बाद में धीरे 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 करते करते, मतलब आप समझ लीजिए कि जब हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट जोर पकड़ा और यूरोपीय लिटरेचर कल्चर का प्रभाव भारत पर पड़ने लगा, एक तरफ फिर आपके कम्युनिस्ट पार्टी की एक दो जगह रशिया वगैरह में सत्ता में आ गए, और मार्क्सवाद के विचारों के प्रभाव के कारण, क्योंकि मार्क्सवाद का यह कहना था कि जो कला साहित्य संस्कृति है ये मनोरंजन की चीज नहीं होती है, बेसिकली ये जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए और इनमें ये मादा होना चाहिए कि ये समाज को बदल सके। तो वहां से आर्ट लिटरेचर कल्चर की प्रवृत्ति बदली। अब उसमें प्रेम, विरह, सौंदर्य, मिलन, इन सब के साथ साथ जिंदगी की बातें होने लगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन सभी जगह देखने में आया, चाहे आप थिएटर को देख लें, चाहे आप पेंटिंग को देख लें, चाहे आप स्कल्पचर को देख लें, जहां भी आप देखेंगे वो जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। और वही बदलाव आपको शेर व शायरी में भी दिखाई देता है। अब वो शेर व शायरी प्रेम प्यार की बात न करके या उसकी भी बात करते हुए वो जिंदगी की बातें करने लगे। तो मित्रों, इसी तरह की एक जो शायरी है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये भी बशीर बद्र जी की ही है। आप देखिए कि कैसे कहां शाकी और जाम और इन सब की बात करने वाली विधा लिटरेचर अब किस तरीके से जिंदगी की बातें कर रही है, और जिंदगी की ही बातें नहीं बल्कि सच पूछे तो जिंदगी की जो गंभीर फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, उस दर्शन को एक्सप्रेस कर रही है। इसका मतलब है मित्रों कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये व्यक्ति होता है कि वो उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप लोगों को दी है, अब आप देखिए कि मैं उनकी 6 लाइनें आपके सामने रख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको जिंदगी से जोड़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वह बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वह बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वह बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं इसके, दिल और दिमाग दोनों की गहराई तक उतर जाने वाले अल्फाज। फ्रेंड्स, इसमें जिंदगी का फलसफा है। आपकी जो ताकत है, एक व्यक्ति की जो ताकत है, उसका इससे अच्छा बयान सच पूछिए तो शेर व शायरी के अंदाज में मुझे अभी तक पढ़ने को नहीं मिला, सुनने को भी नहीं मिला। वो क्या कह रहा है दोस्तों, कि पत्थर तो पत्थर है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो तुम हो जो उसको कुछ भी बना सकते हो। तुम्हारे हाथ की छेनियां उसे मूर्ति बना सकती हैं, तुम अपने अंगूठे में सिंदूर लगा करके उसके ऊपर चढ़ा दो तो वो देवता बन जाएगा। तुम हो और कुछ भी नहीं, तो तुम उसे पैर से ठुकरा करके अपने रास्ते का की बाधा समझते हुए किनारे कर सकते हो। तुम ही हो जो अपने हाथ में उस पत्थर को उठाकर चाहो तो किसी के घर की खिड़कियों को तोड़ सकते हो। जो कुछ भी हो वो सिर्फ तुम ही हो। पत्थर तो कुछ भी नहीं है, न तो उसमें चेतना है, न उसमें स्पंदन है, न उसके कुछ भी नहीं है, तुम हो। और अगर सर झुका दोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। दोस्तों, ये हर चीज पर लागू होती है, हर बात पर लागू होती है कि आपको अपने विचारों और अपनी भावनाओं का संचार करना पड़ता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर आपको वो चीजें दिखाई देने लगती हैं, आप उसके बारे में उसी तरह से महसूस भी करने लगते हैं। और जिनके बारे में की बात कर रहा हूं उसमें हर कोई शामिल है दोस्तों, हमारे माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, किताबें, गुरु, पड़ोसी, जिसको भी शामिल कर लीजिए, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, चट्टान, जिसको भी आप चाहें, क्योंकि यहां तो कह रहे हैं कि पत्थर देवता हो जाएगा, पत्थर तक को आप क्या बना सकते हैं, देख रहे हैं, देवता मतलब बिल्कुल एक लोएस्ट, पत्थर बिल्कुल लोएस्ट पर है और हाईएस्ट पर है देवता, मतलब आप लोएस्ट को हाईएस्ट तक पहुंचा सकते हैं और वो सिर्फ आप हैं। इसलिए वो कहते हैं दोस्तों कि बने बनाए रास्ते का कोई मतलब नहीं होता, आदमी में इतनी कुवत होती है कि वो जिधर भी चल पड़ता है उधर ही रास्ता बन जाता है, जैसे नदियां। अब क्या समझते हैं कि नदियों का किसी ने कोई मैप बनाया पहले और फिर नदियों को निकाला, नहरों को मैप बना करके निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, नदियों को नहीं, नदियां तो खुद निकली हैं, खुद उन्होंने अपने लिए रास्ता बनाया है और जहां अवरोध आए, चट्टाने आई, तो या तो उसने वहां से रास्ता बदल दिया या उस चट्टानों से लड़ाई करके, संघर्ष करके उन चट्टानों को तोड़ा। याद रखिए, आपने कहानी में भी शायद ही ये सुना हो कि कोई नदी लौट गई, वो तो जहां से आई थी वहीं वो वापस लौट गई, ऐसा किसी भी नदी ने नहीं किया है, क्योंकि उसे अपना हुनर मालूम है और उसको मालूम है कि हमको बने बनाए रास्ते की जरूरत नहीं है, जिस तरफ भी चल देंगे उधर ही रास्ता बन जाएगा और अंत में समुद्र को पा लेंगे, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल मिल जाएगी। और दोस्तों, जहां तक जिंदगी का सवाल है, जहां तक सफलताओं का सवाल है, याद रखिए ये जिंदगी उस मायने में बहुत बेरहम है, सफलताएं भी बहुत क्रूर हैं, निर्मम हैं, बेरहम हैं। एक तारा अगर टूट गया तो आसमान क्यों रोएगा, टूटने दीजिए, हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, एक टूट जाने के बाद आसमान रोता नहीं है क्योंकि उसके पास करोड़ों हैं। ठीक इसी तरह से जिंदगी भी, अगर तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा, मुझे परवाह नहीं है, तू ना सही दूसरा सही, दूसरा ना सही तीसरा सही, तीसरा ना सही बहुत से लोग हैं, चौथे पांचवें असंख्य गिनतियों का कोई अंत नहीं है, वहां से कोई ना कोई मेरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसमें पहला शब्द है कितनी सच्चाई से मुझसे, ये बेबाकीपना है जिंदगी का, वो संकोच नहीं करती है, वो झूठ नहीं बोलती है, वो आपका लिहाज नहीं करती है, वो तो अपनी बात को सच सच उगल देती है और उसने उगल दिया कि अगर तुम नहीं तो याद रखो कोई दूसरा हो जाएगा। मित्रों, इसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी पर अप्लाई कर लीजिए, आप नहीं तो कोई दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, प्रेम पर अप्लाई कर लीजिए, रिलेशनशिप पर अप्लाई कर लीजिए, सफलताओं पर अप्लाई कर लीजिए, उपलब्धियों, जिस पर भी आप चाहें अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि तरीका ही यही है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। और मित्रों, इन सब के केंद्र में याद रखिए जो बात यहां कही जा रही है वह है, तुम सर झुकाओगे, आपके ऊपर है सारी चीजें, आप, सिर्फ आप। मेरे दोस्तों, आप सब अपनी इस ताकत को समझिए, अगर हम कहीं असफल हो रहे हैं तो उसके लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हमसे कहीं चूक हो रही है, हमसे कहीं गलती हो रही है, हमें अपनी उस चूक और उस गलती को आइडेंटिफाई करना होगा, उसे समझना होगा, उसे पकड़ना होगा, बात तभी बनेगी, शिकायतों से बात नहीं बनेगी। शिकायतें करने से क्या हो जाएगा, ठीक है आपकी बात सुन ली जाएगी, सुनने वाला मुस्कुरा लेगा, बात खत्म, लेकिन जिंदगी तो आपकी नहीं होगी, ना आप ही जिंदगी के होंगे, क्योंकि उसको कोई दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ताकत को समझिए, और जब आप अपनी इस ताकत को समझ, जिस दिन समझ जाएंगे, आप देखेंगे कि जिंदगी जीने का आपका अंदाज बदल जाएगा और सारी चीजों के प्रति आपकी दृष्टि बदल जाएगी। उसको बदले बिना दूसरे बदलाव संभव नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो हम लोग बात कर सकें। आपने देखा है कि जो आपने सुना है कि जो पहले की जो खबरें आ रही हैं उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन जैसा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की घटना को ही लेकर के शुरुआत न्यूज की गई है। जैसा कि मैंने बताया था कल मित्रों आपको कि जो अरुणाचल प्रदेश की घटना है और इससे पहले जो उत्तराखंड की घटना हुई थी वो राष्ट्रपति शासन को लेकर के थी, और खासकर जो फेडरलिस्टिक स्ट्रक्चर है जो हमारे संविधान का जो संघीय ढांचा है उस पर लगातार बार बार चोट होती रहती है, और उस पर जो सबसे बड़ी चोट होती है वो होती है वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को लेकर। फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे थोड़ी सी बात ये भी कही थी कि वहां राज्यपाल की भूमिका पर भी विचार मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है, संवैधानिक व्यवस्था पर भी पूछा जा सकता है। मैं यहां कुछ आपको थोड़े से अलग तरीके से मैं आपको इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप में एक वाइड रेंज और थोड़ी सी डेप्थ में जाकर के जिसको आप द बीट कहते हैं इस तरह की घटनाओं का विश्लेषण करने की दृष्टि विकसित हो सके। फ्रेंड, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है? देखिए, परिभाषाओं पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं संविधान पर भी नहीं जा रहा हूं। डेमोक्रेसी का बहुत सिंपल सा मतलब है जनता का शासन, लोगों का शासन। बहुत सिंपल सा मतलब है, लोग तो शासन करते नहीं है, तो लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, जिसे हम एमपी, एमएलए, मेयर्स ये सब कहते हैं, राइट? देखिए, ब्रिटेन ने यही गलती की। ब्रिटेन ने अभी जो ब्रिटिक्स जो यूरोपियन यूनियन से जो निकलने का फैसला किया, जिस आधार पर किया, उसने लोगों पर छोड़ दिया, सीधे सीधे लोगों पर छोड़ दिया। और दोस्तों, ये हमको यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं रहना है, ये अपने आप में इतना जटिल प्रश्न है, इतना टेक्निकल प्रश्न है कि आम लोग उसे नहीं समझ सकते कि रहने से क्या फायदा होगा, निकलने से क्या फायदा होगा, क्योंकि ये टेक्निकल, इसमें इकोनॉमी सिचुएशंस और मतलब कितनी सारी चीजें नहीं है, जीवन के सारे क्षेत्रों के संदर्भ इससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही बारीक चीज है। उसने लोगों को सौंप दिया और आज हालत ब्रिटेन की जो हो रही है वो आप देख रहे हैं। ब्रिटेन भी पछता रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा खुश है इस बात से, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि जनमत हुआ, ये लोगों का शासन है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि लोग सीधे शासन नहीं करते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, और ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये लोकतंत्र का सार है, कह लीजिए लोकतंत्र का सत्व है, राइट? तो भारत में केंद्र में सरकार चुनी जाती है, राज्यों में सरकार चुनी जाती है। केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, राज्यों में उन्हीं के पैरेलल बिल्कुल राज्यपाल होते हैं। अब इसमें जो एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों कि राष्ट्रपति को तो पूरा देश चुनता है ना, वो चुनाव उनका होता है ना। अब ये बात अलग है कि उनके चुनाव में एमपी और एमएलए ही भाग लेते हैं, दूसरे लोग भाग नहीं ले सकते, पर डायरेक्ट पब्लिक भाग नहीं लेती है। लेकिन राज्यपालों का चुनाव नहीं होता है, राइट? राज्यपाल को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, पहली बात है ना। इसकी जो बारीकी है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, और हो सकता है आप जानते भी हो। एक तो राज्यपाल गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा यह कि जो राज्यपालों का जो टर्म है, जो कार्यकाल है, आल्दो लिखा हुआ 5 साल का है, संविधान में आप पढ़ेंगे तो 5 साल का, लेकिन वो फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन वो फिक्स है। हालांकि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग जो इम्पीचमेंट है उसकी प्रोसेस इतनी जटिल है, इतनी कठिन है कि हटाना आसान नहीं होता। अभी तक एक को भी नहीं हटाया जा सका, हमारे यहां महाभियोग लगा ही नहीं है। अभी लगा है एक जस्टिस के ऊपर लगा था, हाईकोर्ट जस्टिस पर, लेकिन वो पारित नहीं हो सका क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, और होना भी चाहिए, कठिन ही होना चाहिए ऐसी चीजों में। ब्रेक्सिट जैसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिक वोट दे और आप इतना बड़ा निर्णय ले लें। तो अब राष्ट्रपति को तो एक तरीके से 5 वर्ष का जो कार्यकाल है मान करके चलिए कि फिक्स टेन्योर मिल जाता है, लेकिन राज्यपालों के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि वहां वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर चाहे तो राष्ट्रपति 2 दिन में उनको हटा दें या 5 साल के बाद नेक्स्ट टर्म दे दे, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो मित्रों, ये जो राष्ट्रपति की जो इच्छा है, ये राज्यपालों को सबसे ज्यादा कमजोर कर देती है, और दूसरा उनका जो अपॉइंटमेंट भी होना है उसमें पब्लिक का, एमएलए का, एमपी का, किसी का कोई लेना देना नहीं है। वह भी सीधे सीधे राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसको बनाते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब मैं बार बार यहां राष्ट्रपति की इच्छा कह रहा हूं, ये केवल संविधान के शब्द हैं। बेसिकली ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किसको गवर्नर बनवा रही है। जो सरकार सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, वो डिसाइड करती है कि किसको राज्यपाल बनाएगी, किसको नहीं, और कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी उनका ट्रांसफर किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है मित्रों, ये राज्यपालों को बेहद कमजोर कर देती है। और सच पूछे तो राज्यपालों को एक प्रकार से वो केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली बना देती है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि अभी की सरकार के साथ है या पीछे इससे पहले की सरकारों के साथ थे, लगभग सिचुएशन इसी तरह की देखने में आती है। तो अब राज्यपाल क्या करे? अगर राज्यपाल स्टैंड लेता है, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार से उसे कुछ हिंट्स मिलते हैं, ये व्यावहारिक रूप में यही होता है कि भाई ये सब होना चाहिए, अखबारों में तो हम सब यही पढ़ते हैं, तो अगर वह उस उनके अनुकूल कदम नहीं उठाता है तो कुछ ही दिन में पता लगा कि उसका ट्रांसफर हो गया, नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया है, और कहीं भेज दिया गया या हटा दिया गया, कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको सत्ता में बने रहना है, पद पर बने रहना है, सत्ता में तो क्या कि पद पर बने रहना है, तो वो बात मानने के लिए बाध्य है। अब सवाल यह है कि क्या गवर्नर में इतना नैतिक साहस है कि वह एक सही कदम उठाने की कीमत अपने पद को छोड़ने के रूप में लगा सके, दे सके, राइट? अच्छा, फिर चलिए एक राज्यपाल ये कीमत चुका भी देता है, मान लीजिए एक राज्यपाल चुका देता है, ठीक है, वो राज्यपाल हट जाएगा, फिर दूसरा राज्यपाल आएगा। अब सवाल यह कि वो राज्यपाल कौन आएगा, क्या वो भी यही करेगा? सवाल ही नहीं, व्यावहारिकता पर सोचे, कर सकता है वो बात अलग है, लेकिन वो करेगा नहीं। तो यानी कि अगर एक राज्यपाल ने ये कीमत भी चुका दी तो उससे जो संकट जो आने वाला है वो संकट टला नहीं, वो 5 दिन बाद आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। तो मित्रों, ये जो हमारे संविधान में जो राज्यपाल की स्थिति है, सच पूछिए तो उसने खासकर 356 को स्टेट में लगाने की संभावनाओं को और ज्यादा सरल बना दिया है, और सच पूछिए तो संभावित कर दिया है। तो ये मैंने राज्यपाल की स्थिति और राष्ट्रपति को लेकर के थोड़ा सा आपको एनालिटिकल सिचुएशन के हिसाब से बताया। और मित्रों, जो मैंने डेमोक्रेसी की बात कही, तो इसका फैसला राज्यपाल क्यों करें, इसका फैसला कोर्ट भी क्यों करे, लोग करें ना। अगर आप डेमोक्रेसी को लोगों की बात से जोड़ करके देख रहे हैं, और है भी, तो लोगों को करने दीजिए। तो लोग कैसे करेंगे? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से करेंगे, अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से करेंगे। तो एमएलए को मौका दे दीजिए कि साहब वो किसको चुने, किसको नहीं चुने, किसको मुख्यमंत्री बनाए, अब उसका सदन का विश्वास उसके पास है नहीं है, बहुमत है नहीं, उनको फैसला करने दीजिए। बात बहुत सामान्य सी है, सरल सी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं। लेकिन सच पूछिए तो ये जो राष्ट्रपति शासन वाला मामला है, लगातार कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, और हमेशा ये बहुत जबरदस्त विवाद में आता है, राइट फ्रेंड? तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस उसकी दी है। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो यूपी में, देखा आपने कि अब चुनाव होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो कांग्रेस पार्टी ने सीएम कैंडिडेट के रूप में शीला दीक्षित को प्रपोज किया है, और आप अभी आप अखबारों में पढ़ भी रहे हैं और आगे भी चीजें आती रहेंगी। यह हमारा कंसर्न ये नहीं है कि सीएम कैंडिडेट कौन है, क्या है, वो तो एक राजनीतिक पर्यवेक्षकों की बात अलग है। अगर हम सिविल सर्विस के लिहाज से देखें तो आपको थोड़ा सा मित्रों, जो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट है, संविधान है, और दूसरा है पॉलिटिक्स है, दोनों में फर्क है ना। पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, जिसमें हमारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, राजनीतिक पार्टियों का स्वरूप आता है कि वो अपना संगठन कैसे चलाती हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं, किस तरीके से फिर वो काम करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स है। तो मित्रों, यहां जो मैं आपसे इस न्यूज के माध्यम से जो अर्ज करने जा रहा हूं वो ये कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स सिनेरियो को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो चीजें बड़ी फेयर हैं, क्लियर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि चीजें कैसे उलझ जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे फिर पॉलिटिक्स होती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने वाला ग्रुप कौन सा है? पॉलिटिकल पार्टीज ही है ना, तो आपको पॉलिटिक्स को भी समझना होगा। राइट फ्रेंड, तो कभी हम लोग इस पर बात करेंगे जब पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे होती है, इसका स्वरूप, संगठन, अगर कभी टाइम मिला, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि टाइम मिल पाएगा, लेकिन कभी हुआ तो मैं इस पर बात करूंगा। फ्रेंड्स, मैं न्यूज़पेपर्स पर आज ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं आपसे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स तो संख्या में काफी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सबके सब सारी क्लिपिंग्स दो तीन टॉपिक्स पर कंसंट्रेट कर हो रही हैं। नंबर एक, नो डाउट साउथ चाइना सी, जो दक्षिण चीन सागर है, उस पर मैंने आपको बताया था, अब आर्टिकल्स आने और एडिटोरियल कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, आप बिल्कुल मत उलझिएगा। देखिए, मैं जो अखबारों के आपको लगभग ज्यादातर क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, मैं इसलिए कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अब मेरा बड़ा रीडर वर्ग है ना, जैसे मान लीजिए कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है तो उसको टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग्स मिल जाएगी, कोई हिंदू पढ़ रहा है तो उसको हिंदू की क्लिपिंग्स मिल जाएगी, कोई हिंदुस्तान पढ़ रहा है तो उसको हिंदुस्तान की क्लिपिंग्स मिल जाएगी, कोई दैनिक जागरण भास्कर पढ़ रहा है तो उसकी भास्कर की क्लिपिंग्स मिल जाएगी, है ना। तो मैं तो आपको सभी तरह की इस तरह की क्लिपिंग्स प्रोवाइड करता हूं, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सारी क्लिपिंग्स पढ़ें ही, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि क्लिपिंग्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि क्लिपिंग्स की संख्या बढ़ जाती है, तो कहीं आपके दिमाग में इसका तनाव ना हो कि अरे बाप रे, इतनी सारी क्लिपिंग्स हैं, इतना टाइम लग रहा है, इतना कैसे पढ़ेंगे। और अगर जरूरत होती तो मैं आपसे यही कहता कि चाहे अब जितना भी समय लगे, अगर जरूरत है तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन इनफैक्ट जरूरत उसकी होती नहीं है। मैं कल आपको बता चुका हूं कि साउथ चाइना के बारे में आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, बहुत ही सामान्य स्तर की तैयारी करनी है, क्योंकि ये जनरल स्टडीज का हिस्सा है, लेकिन अखबारों में जो चीजें आ रही हैं वो आपके जनरल स्टडीज के हिसाब से नहीं आ रही हैं, है ना। अखबारों में जो भी इसके एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, तो आपको उन कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचाना है और केवल अपने काम की चीजें निकाल करके और बात खत्म कर देनी है। इसलिए आप बहुत ज्यादा टेरर में मत आइएगा। तो साउथ चाइना सी पर काफी क्लिपिंग्स हैं दोस्तों। ठीक इसी तरह से अभी जो अरुणाचल प्रदेश का जो मामला हुआ है, तो बट नेचुरल है कि अरुणाचल प्रदेश पर भी काफी क्लिपिंग्स आ रही हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो उसकी दिशा है वो वही है, तो आप उस दिशा को पकड़ करके चलिए, उसको भी आप फटाफट पढ़ करके निपटा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप देखेंगे ना कि बहुत सी चीजें रिपीट हो रही हैं। अखबार, सारे अखबार उसी बम्बई केस को लेकर के लिखेंगे और लोकतंत्र की बात कहेंगे, और तो आप पढ़िए और सरसरी निगाह से और उसे छोड़ दीजिए। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जो तीसरी घटना है वो जम्मू कश्मीर की घटना है, है ना। अभी जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के भी अब काफी क्लिपिंग्स आ रही हैं, अब कल परसों से आप देख रहे हैं कि उस पर भी मैं काफी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसके साथ भी आपको उसी तरह का सलूक करना है, है ना। कहने का कुल मतलब ये दोस्त फ्रेंड्स, कि आप अपने काम की चीज उसमें देखिए, इस तरह का दबाव अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि इनकी सारे कुछ पढ़ने हैं, नॉट एट ऑल। आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का दोस्तों एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो स्वच्छ भारत को लेकर है, इसको आप देख लेंगे स्वच्छ भारत पर, क्योंकि मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत पर हो सकता है कि कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए। ये नहीं आएगा कि स्वच्छ भारत क्या है, कैसे क्या क्या इसमें होना है, अभी तक क्या प्रगति हुई है, क्यों सफलता नहीं मिल पा रही है, मतलब एक समालोचनात्मक परीक्षण जैसा करने को कहा जाएगा। तो स्वच्छ भारत पर जहां भी आपको कुछ भी थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, कि परसों मेरा एक ब्लॉग एनडीटीवी पर रिलीज हुआ है, खासकर चेन्नई हाई कोर्ट ने अभी जो राइटर्स के फेवर में एक जजमेंट दिया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, कि उन्हें लिखने दें और अगर आपको कोई किताब पसंद नहीं आ रही है तो आप मत पढ़ें, उसे फेंक दें, तो आप उस पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं, है ना। उसे मैंने एक अलग एंगल से लिखने की कोशिश की है, तो एनडीटीवी के ब्लॉग में जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं, लोगों ने उसकी सराहना की है, तो वह आपको एसे राइटिंग में काम आएगा। वैसे भी कल मैंने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, वो भी भाषाओं पर जो दबाव मैं महसूस कर रहा हूं उसको लेकर के था। तो ये दोनों मिलकर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनरल स्टडीज में वहां पर आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे, और एसे राइटिंग में इसका रोल हो सकता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज कैसे रिदमिक होनी चाहिए, शब्द कैसे बदल जाते हैं, कहने का अंदाज कैसे बदल जाता है, तो उस दृष्टि से अगर आप इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो तब आप इसका सही मायने में फायदा उठा सकेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास एक मेल आया है किशन मेवाड़ा का, जो पालिताना गुजरात से हैं। उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में बहुत से लोगों को बताते हैं और उसका उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो किशन, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी अकेडमी की, अपनी पूरी टीम की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और दूसरे साथियों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि वे इसी तरीके से इस शुभ संदेश को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, कुछ और दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं। अभिषेक वर्धन सिंह मनमाड़ महाराष्ट्र से, शिवम त्रिपाठी, वीरेंद्र यादव न्यू दिल्ली से, अतुल तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से, और विनोद राठी रोहतक हरियाणा से। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब दो दिन की आपकी छुट्टियां हैं, ये दो दिन की छुट्टियां आपकी बड़ी खुशनुमा हों, बहुत आप इसे अच्छे से एंजॉय करते हुए बिताएं, अपने जो बाकी बचे हुए काम हैं उनको पूरा करें, रेस्ट करें, ताकि फिर से आगे आने वाले 5 दिनों के लिए आप ऊर्जा इकट्ठी कर सकें। तो मित्रों, इसी की शुभकामनाओं के साथ मैं अब इसे अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।